जमानों की उमंग, बाब नंबर एक। खुदा हमारे साथ। उसका नाम अमानवायल होगा। खुदा हमारे साथ है। खुदा के जलाल की खुशखबरी की रोशनी मसीह खुदावन की सूरत में देखी गई। करिन्थियों 4:4। अबदियत से ही मसीह यीशु खुदा के साथ मुत्तहिद था। वो खुदा की शबी था। वो खुदा की बड़ाई और उसकी शानो शौकत की शबी था। अपने जलाल की बेनिहायत आबोताब को उसे हमारी दुनिया पर आकर जाहिर करना था। वो उस गुनाह भरी और बारीक दुनिया में आया ताकि खुदा की मोहब्बत की ज़िया चमकाए। वो आया ताकि खुदा की तरह हमारे साथ हो। इसीलिए उसके हक में पेशनगोई की गई थी कि उसका नाम अमानवायल होगा। आसमान से आकर हमारे साथ बोदोबाश रखने के वसीला उसे दोनों इंसान और फरिश्तों पर खुदा को आश्कारा करना था। वो खुदा का कलाम था। मसीह के जरिए खुदा के ख्यालात का इजहार हुआ। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों के लिए जो दुआ मांगी उसमें उसने कहा, मैंने तेरे नाम को उन पर जाहिर किया, यानी खुदावन खुदा ही रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। यूहन्ना 26:17। हमारी ये छोटी सी दुनिया कुल कायनात के लिए बतौर किताब है। खुदा के फजल का हैरत अंगेज सबब और उसकी निजात बख्श मोहब्बत के भेद को फरिश्ते देखने के मुतमन्नी हैं। नीज ये किताब ताहियात उनके जेरे मुताला रहेगी। रास्तबाज और बदकार दोनों, निजात याफ्ता लोग और फरिश्तेगान, खुदावंद येसु मसीह की सलीब में इल्म और गीत पाएंगे, और ये देखा जाएगा कि मसीह के पहरे पर दरख्शां जलाल उसकी मोहब्बत का जलाल है जो खुद इनकारी पर मबनी है। कलोरी से निकलने वाली रोशनी में देखा जाएगा कि जमीन और आसमान पर खुद इनकारी की मोहब्बत ही जिंदगी का उसूल है, यानी ऐसी मोहब्बत जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, और ये खुदा से सादिर होती है, और ये मोहब्बत उस हलीम और शिकस्ता दिल में बसीरा करती है जो नूर में रहता है। इब्तदा में खुदा तमाम तखलीक से आश्कारा होता था। ये यीशु मसीह था जिसने आसमान को फैलाया और जमीन की बुनियाद रखी। ये उसका ही दस्ते मुबारक था जिसने दुनियाओं को फजा में लटकाया और खेत के फूलों को तरतीब दिया। उसकी कुव्वत ने पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शा। समंदर उसके हैं और उसने उनको बनाया। जबूर 6:65, जबूर 5:95। उसने जमीन को खूबसूरती से मामूर किया और फजा को नगमों से भर पर। उसने जमीन की तमाम चीजों पर आसमान और फजा में खुदा की मोहब्बत का पैगाम तहरीर कर दिया। गो गुनाह ने खुदा की कामिल सनतगरी को मस्ख कर दिया है, फिर भी उस तहरीर उसके हाथ के बनाए हुए कामों पर कायम है। अब भी तमाम तखलीक उसके जलाल की अजमत का ऐलान करती है। इंसान के खुद गर्ज दिल के अलावा तखलीक में कोई और चीज ऐसी नहीं जो दूसरों के काम ना आती हो। फजा में उड़ने वाला या जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो दूसरों की खिदमत ना करता हो। हर दरख्त, हर झाड़ी जिंदगी का ऐसा उनसुर मुहैया करती है जिसके बगैर कोई इंसान या जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसके अवज इंसान दरख्तों और झाड़ियों के काम आता है। फूल अपनी खुशबू और खूबसूरती दुनिया को अता करते हैं। सूरज हजारों दुनियाओं को अपनी रोशनी से शादां करता है। समंदर जो हमारे तमाम नदी नालों का मंबा है, वो तमाम सरजमीं की नदियों का पानी सिर्फ इसलिए हासिल करता है ताकि फिर हमें चश्मों और सूतों की सूरत में वापस दे। कुहर जो जमीन से उठती है वो बारिश की सूरत में वापस धरती पर आती है ताकि सब्जियात बुरूमंद हों। वो रूहें जो गुनाह में गिरकर नजिस हो चुकी हैं, जलाली फरिश्ते उनकी बेलौस और उन थक निगरानी करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं। आसमानी मखलूक इंसानी दिल को जीतने की कोशिश करती है। वो आसमानी बारगाहों से इस तारीख दुनिया में तूर लाती और इंसानी रूह पर बड़ी मुखलिस और पुरुम्मीद खिदमत बजा लाती है। और हम इंसान जो खो चुके हैं उनको मसीह की रफाकत में लाने के लिए कोशा हैं। ऐसा करने से वो हम इंसानों को खुदा के निहायत करीब ले आते हैं। इन तमाम छोटे मोटे नुमाइंदगान को छोड़कर हम मसीह में खुदावन को देखते हैं। खुदावन येसु की तरफ तकने से हम जानते हैं कि दूसरों की खिदमत में ही खुदावन का जलाल है। खुदावन येसु मसीह ने फरमाया, मैं अपने तई कुछ नहीं करता, जिंदा खुदावन ने मुझे भेजा है और मैं बाप में जिंदा हूं। मैं अपना जलाल नहीं चाहता, बल्कि उसका जलाल जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 28:8, यूहन्ना 57:6, यूहन्ना 50:8, यूहन्ना 18:7। इस कलाम में कायनात से पाया ताकि उसूल और जाब्ते रख दिए गए हैं। सब कुछ मसीह यसु ने खुदावन से पाया ताकि दूसरों को दे। बस आसमानी बारगाहों में बेटे के जरिए से खुदा की जिंदगी तमाम मखलूक में जारी सारी रहती है, और इसके एवज तमाम कायनात खालिक खुदावन की हम्द व सना और खिदमत बजा लाती है। यूं मसीह की विसातत से फलाह व बहबूद का दायरा पाया तकमील को पहुंचता है। मगर अफसोस की बात यह है कि आसमानी बारगाहों में इस उसूल की कानून शिकनी हुई। खुदगर्जी गुनाह की इब्तदा बनी। लौ सफीर जो साया अफगन करोबी था, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो सारी आसमानी मखलूक का सरदार हो। बस उसने चाहा कि तमाम आसमानी मखलूक को उनके खालिक से दूर करके अपनी तरफ खींच ले, ताकि वो सब खुदा की बजाय उसके हुजूर झुकें। लिहाजा उसने खुदावन खुदा को आसमानी मखलूक के सामने गलत तौर से पेश करते हुए कहा कि खुदावन बड़ा खुदगर्ज है, वो सिर्फ अपनी ही बुजुर्गी का खाहां है। असल में इसकी बदकार खिसलत ने खालिक खुदावन का मकाम छीनने का मंसूबा बनाया। इस तरह उसने फरिश्तों को वरगलाया, और इसी तरह इंसानों को भी खुदा के कलाम और उसकी नेकी और भलाई पर शक करने के लिए लॉसफीर ने फरिश्तों और इंसानों की रहनुमाई की। उसने उनको कहा कि चूंकि खुदावन इंसाफ का खुदावंद है और जाबिर हुक्मरान, इसलिए वो गुनहगार को माफ न करेगा। बस उसने इंसानों को खुदा के खिलाफ बगावत में अपने साथ मिला लिया। इस तरह दुनिया पर गमों और उदासियों की रात छा गई। खुदावंद को गलत अंदाज में पेश करने की वजह से दुनिया तारीख हो गई। गमों अंधों के साये में ढकी हुई दुनिया को रोशन करने और उसे खालिक खुदावंद के पास वापस लाने के लिए लाजिम है कि लूसपेर के धोखों की ताकत की मिलिया मीट किया जाए। ये सब कुछ तशद्दुद के जरिए नहीं हो सकता था, क्योंकि तशद्दुद खुदा की हुकूमत के जाब्तों के खिलाफ है। वो तो सिर्फ मोहब्बत की खिदमत पसंद करता है, और मोहब्बत हुक्म या जबर से हासिल नहीं हो सकती। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत के जरिया ही जीती जा सकती है। खुदा को जानने के लिए उसे मोहब्बत दिखाना और अपने अंदर इब्लीस की सीरत के बरक्स खुदावंद की सीरत मुनक्किस करना जरूरी है। पूरी कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती इस काम को अंजाम दे सकती है, वही जो खुदा की मोहब्बत की गहराई और ऊंचाई से वाकिफ है। दुनिया की स्याही पर रास्तबाजी के सूरज को तुलू होना लाजिम है, क्योंकि लिखा है, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी कर्णों में शिफा होगी। मलाकी 2:4। हमारी निजात की तजवीज आदम के गुनाह में गिरने से पहले बना ली गई थी, मगर अजल से पोशीदा रही। लिखा है, अब खुदा जो तुमको येसु मसीह की मनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जवाजिल से पोशीदा रहा। रोमियो 26:16। अबदियत से यह मुकाशफा खुदावन के तख्त की बुनियाद रहा है। खुदावन और येसु दोनों इब्तदा से जानते थे कि इब्लीस बरगश्ता हो जाएगा और उसके जरिया से इंसान भटक जाएगा। आलिमुल गैब होते हुए खुदा ने गुनाह की मौजूदगी को भांप लिया था और उस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशतर इंतजाम भी कर लिया था। लिहाजा उसकी मोहब्बत अजीम है कि उसने गुनहगार दुनिया के लिए अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 16:3। लू सफीर ने तो कहा था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं खुदावन ताला की मानिंद हूंगा। यसया 14:13-14। लेकिन खुदावन येसु मसीह अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिन की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। फिलिप्पियों 7:6-2। खुदावंद यसू मसीह की ये रजाकाराना कुर्बानी थी। वो खुदा का जलाल कायम रखकर फरिश्तों की खिदमत कबूल कर सकता था, लेकिन उसने शाही असा को वापस अपने बाप को देने का इंतखाब किया और अपने आप को पस्त कर लिया, ताकि तारीख दुनिया में अपना नूर कुमकाए और तबाह होने वाली मखलूक को अबदी जिंदगी अता करे। कमोबेश 2000 साल का अरसा हुआ कि आसमान से एक हैरत अंगेज आवाज खुदा के तख्त से सुनाई दी। तो ने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूं। किताबों के वरकों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदावंद तेरी मर्जी पूरी करूं। इब्रानियों 7:5-10। इन अल्फाज में अजल से जो भेद पोशीदा था, उसकी तकमील का ऐलान होता है, यानी मसीह खुदावंद जो मुजस्सम होकर हमारी दुनिया में आने को था। वो कहता है कि तू मेरे लिए एक बदन तैयार किया, जो जलाल उसे शुरू से बाप के साथ था। तू हम उसकी हुजूरी को बर्दाश्त ना कर सकते, दूसरे लफ्जों में उसे देखकर जिंदा ना रह सकते। उसकी उलोहियत बशरियत में छुप गई, उसका अनोखा जलाल बशरियत में नमूदार हुआ। ये अजीम मकसद बसा औकात तमसीलों, अलामतों और तशीहों के जरिया दिखाया गया था। जलती झाड़ी जिसके जरिया मसीह मोसे पर जाहिर हुआ, खुदा की नुमाइंदगी करता था। यहां जो अलामत जाते इलाही के लिए मुंतखब की गई, वो मामूली सी झाड़ी थी जिसमें कोई खूबसूरती न थी। ताहम इस मामूली सी झाड़ी ने उलोहियत को छुपा रखा था। कादरे मुतलिक ने खुद को इस हकीर सी झाड़ी में इसलिए छुपा रखा था, ताकि मूसा इस पर नजर करके जिंदा रहे और इस तरह दिन के वक्त बादल और रात के वक्त आग के सुतूनों के जरिया खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ अपना राबता और नाता कायम रखा। उनके जरिए खुदा ने बनी इसराइल पर अपना मंशा जाहिर किया और अपना फजल अता किया। यूं खुदा का पूरा जलाल कम होकर पर्दे में चला गया, ताकि कमजोर इंसान उसका नजारा कर सके। इसीलिए मसीह खुदावंद को इंसानी बदन में आना पड़ा, यानी उसने हमारी पस्त हाली के बदन को इख्तियार किया। दुनिया की नजर में उसमें कोई खूबसूरती ना पाई जाती थी कि कोई उसका मुश्ताक हो, फिर भी वो खुदा से मुजस्सम हुआ, ताकि हलीमों और कमजोरों, दुखियों और आजमाइश में घिरे हुओं को अपनी तरफ खींच ले। बनी इसराइल के लिए खुदावंद ने मूसा को फरमाया, वो मेरे लिए एक मुकद्दस बनाए, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। वो हैकल में अपने लोगों के दरमियान रहा। बयाबान के परेशान कुन सफर के दौरान उसकी मौजूदगी की अलामत उनके साथ थी। बस यीशु मसीह ने हम इंसानों के दरमियान अपनी मुकद्दस हैकल कायम की। उसने अपना खैमा हम इंसानों के खैमों के साथ खैमाजन किया, ताकि वो हमारे साथे रहे और हमें अपनी इलाही सीरत से रोशनास कराए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमिया रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के उकलूते का जलाल। जब से खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आया है, हम जानते हैं कि उस वक्त से खुदा हमारी आजमाइशों से वाकिफ है और हमारे रंजो अलम के बायस हमसे हमदर्दी जताता है। आदम के हर बेटे और बेटी को ये समझने की जरूरत है कि हमारा खालिक हम गुनहगारों का दोस्त है, क्योंकि फजल की तमाम तालीम, खुशी व मुसर्रत का हर वादा, मोहब्बत का हर अमल हम मसीह की जिंदगी में बखूबी देख सकते हैं। इब्लीस खुदा की मोहब्बत की शरीयत को खुद गर्जी की शरीयत से ताबीर करता है। वो ऐलानिया कहता है कि उसकी शरीयत को मानना हमारे लिए नामुमकिन है। हमारे पहले वालदैन के गुनाह के नतीजा में जो दुनिया पर मसाइब आए, उसका इल्जाम इब्लीस खुदा को देता है। वो इंसानों को कहता है कि खुदा गुनाह, मौत और रंजो अलम का बानी है। यीशु मसीह आया ताकि इस गुमराही पर से पर्दा उठाए। वो ताबेदारी का मुना देने आया। इसके लिए उसने अपने ऊपर फतर तली और हमारे तजुर्बात में से गुजरा। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानन बनना लाजिम हुआ। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। जो आजमाइश हम पर आती हैं वो उन सब में आजमाया गया, और जो मदद हमें मयस्सर है उससे ज्यादा का उसने मुतालबा ना किया। आम इंसान की तरह उसने आजमाइश का मुकाबला किया और उस पर उस ताकत से गालिब आया जो उसे खुदा से मयस्सर थी। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। जबूर 8:40। जो उन्हीं वो नेकी करने और उन सबको शिफा देने गया जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे थे, तो उसने खुदा की शरीयत के औसाफ और अपनी खिदमत उन पर जाहिर की। उसकी जिंदगी इस बात की शाहिद है कि खुदा की शरीयत को मानना हमारे लिए बही मुमकिन है। अपनी बशरियत के जरिए उसने बशरियत यानी बनी नौ इंसान तक रसाई की, और अपनी उलूहियत से वो खुदा के तख्त को थामे हुए था। इब्ने आदम होने की हैसियत से उसने हमें ताबेदारी का नमूना दिया, और खुदा का बेटा होने की हैसियत से वो हमें ताबेदारी करने की कुव्वत अता करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ही था जिसने झाड़ी में से मूसा को कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने ही मूसा से फरमाया कि तू बनी इसराइल को के मैं जो हूं ने तुझे उनके पास भेजा है। खुरूज 14:3। और यही बनी इसराइल की जिन्नात का अहद था। बस जब वो इंसान के रूप में आया तो उसने बताया कि मैं बैतुलहम का वही बच्चा हूं जो निजात दहिंदा होकर आया हूं। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आज वो हमसे कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जिंदा रोटी हूं, मैं राह हक और जिंदगी हूं। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आज वो हमसे कहता है कि मैं हर वादे का जामिन हूं, मैं हूं, न डरो। खुदा हमारे साथ। गुनाह से हमारी रिहाई की जमानत है, और वो हमें आसमानी शरीयत को मानने की कुव्वत की जमानत भी देता है। बशरियत को अपने ऊपर लेने से मसीह यीशु ने इब्लीस की खसलत के बरक्स सीरत का मुजाहिरा किया, ताहम उसने खुद को इतना पस्त कर दिया कि वो हम इंसानों के बराबर हर गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फिलिप्पियों 8:7-2। जिस तरह सरदार काहन को अपना चोगा उतारकर सफेद लिबास पहनना होता था जो आम काहन का हुआ करता था, उसी तरह मसीह को भी खादिम की सूरत इख्तियार करना पड़ी ताकि कुर्बानी गुजराने। मगर सरदार और मसीह में ये फर्क है कि खुदावन मसीह खुद ही कुर्बानी का बर्रा बना और खुद ही सरदार काहन। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यसाइया 5:53। जिस सजा और सुलूक के हम मुस्तहिक थे वो यस्सू को बर्दाश्त करना पड़ा ताकि उसके इस्तेहकाक को हम इस्तेमाल कर सकें। वो हमारे गुनाहों के सबब मलून ठहरा ताकि हम उसकी रास्तबाजी हो जाएं। उसने हमारी मलून मौत अपने ऊपर ले ली ताकि उस जिंदगी हम पाएं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। अपनी जिंदगी और मौत के जरिए खुदावन मसीह ने उस नुकसान से कहीं ज्यादा फायदा हासिल कर लिया जो गुनाह के सबब से हुआ था। इब्लीस का मंशा यह था कि हम इंसान खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएं, मगर हम खुदावन यीशु मसीह में खुदा के बहुत करीब हो गए। नजात दहिंदा ने हमारी फितरत अपने ऊपर लेने से बनी नौ इंसान के साथ इस कदर पुख्ता कर लिया है जो कभी टूटने का नहीं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना उकलूता बेटा बख्श दिया। यूहन्ना 16:3। खुदा ने सिर्फ हमारे गुनाह बर्दाश्त करने के लिए हक नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए उसे दे दिया है। अब से अबद तक वो इंसानी जामा में रहेगा, और ये खुदावन की तरफ से हमारी नजात के लिए बहुत बड़ी जमानत है कि उसका बेटा उलूहियत के जामा को उतारकर बशरियत के जामा में आ गया। और यही वो अहद है जिसकी खुदावंद जरूर ही पासदारी करेगा। हमारे लिए एक लड़का तौलुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। खुदावंद ने अपने बेटे के वसीला इंसानी फितरत को अपनाया है। ये इब्ने आदम ही है जो कायनात के तख्त का हिस्सेदार है। ये इब्ने आदम ही है जिसका नाम अजीब मुशीर खुदाई, कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा है। यह 16:9। वो खुदा और इंसान का दरमियानी है। वो पाक, बेजरर, गुनहगारों से जुदा है, मगर हमें अपने भाई कहलाने से नहीं शर्माता। इब्रानियों 26:7, इब्रानियों 11:2। मसीह यस्सु में जमीनी और आसमानी खानदानी मुत्तहिद है। अपने लोगों के बारे खुदावन फरमाता है कि वो ताज के जवाहर की मानिंद होंगे जो उसके मुल्क में सरफराज होंगे, क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है। ज़करिया 17:16-9। नजात याफ्तगान की बुजुर्गी खुदावंद के रहम की मुकम्मल गवाही होगी, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सू में हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। अफिसियों 7:2। ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए, उस अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावन मसीह यस्सू में किया था। अफिसियों 10:10-11। मसीह यस्सू के निजात बख्श काम की बदौलत खुदा की बादशाही रास ठहरती है। यूं कादर मुतलक मोहब्बत के खुदा के तौर पर जाना जाता है। इबलीस के इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं और उसकी खसलत दुनिया के सामने खुलकर आ जाती है। बगावत फिर कभी सर न उठाएगी, फिर अबदियत तक कोई बरगश्ता न होगा। खुद इनकारी की मोहब्बत के जरिया जमीनी और आसमानी मखलूक न जुदा होने वाले बंधन
में बंध गए हैं। मुखलसी का काम मुकम्मल हो जाएगा। गुनाह की जगह खुदा का फजल अफसू होगा। ये जमीन जिसका इबलीस बड़ा दावेदार है, उसका ना सिर्फ कफारा दिया जाएगा बल्कि उसकी बड़ी बुजुर्गी और तकरीम होगी। हमारी ये छोटी सी दुनिया जो गुनाह की लानत तले है और जुल्मत कदा बन चुकी है, ये खुदा के बाकी तमाम आलमों में सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखी जाएगी। ये दुनिया जहां खुदा का बेटा इंसानों के साथ रहा, ये दुनिया जहां बादशाहों के बादशाह ने दुख उठाया, इसी जमीन पर जहां वो हर चीज को नया बना देगा, वो हमारे साथ रहेगा और खुदावंद होगा।